नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली कल संपन्न हो गई। ये रिलीफ फिजी से शुरू होकर अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी।
सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निःशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है, एक रिपोर्ट।
उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गांव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहां खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।